नमस्ते दोस्तों, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीरियल आपसे अब बस एक मिस कॉल की दूरी पर है। हर सोमवार से गुरुवार इस सीरियल को सुने और अपने विचार हमारे साथ बांटे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी।
मैं अपने सवालों के भंवर जाल में फंसी हुई थी और उधर घर में अलग भंवर खड़ा हो चुका था।
स्नेहा, अरे ओ स्नेहा बिटिया, अरे जरा मेरा तकिया तो लेती आना।
स्नेहा मानवता गई है दीदी।
क्या फिर से? अरे मानवता कहाँ गई? वो भी इतनी रात में, अरे कोई बात हुई है क्या?
कोई इमरजेंसी केस आया था।
और आपने उसको रोका नहीं? कभी तो रोकना होगा ना। स्नेहा क्या चाहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टरी की पढ़ी है उसको, लेकिन अपनी जिंदगी की नहीं।
अलका बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अपनी जिंदगी से ज्यादा वो दूसरों की जिंदगी की परवाह करती है। और तुम तो माँ हो उसकी, है तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर।
आप तो सालों से यहाँ रहती हैं दीदी, जानती हैं कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, फिर भी आप?
हाँ, फिर भी हम अपनी स्नेहा का ही साथ देंगे बहू। काहे कि स्नेहा ने हमको बदल दिया है, और जब हम बदल गए हैं तो हमारी जैसे मोटी बुद्धि वाले कई लोगों की जड़ बुद्धि बदल सकती है अपनी स्नेहा।
दीदी, मुझे बस स्नेहा की परवाह है और कुछ नहीं मालूम। देखिए जी, आप आज उससे बात कीजिए। अर्जुन से रिश्ता तोड़कर कितनी बदनामी होगी, शादी कहाँ होगी, फिर अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा?
हमने बात करने की कोशिश की थी अलका, लेकिन वो कोई बच्ची तो नहीं है ना।
बच्चे बच्चे ही रहते हैं, स्नेहा की जिद बच्चों जैसी है, उसको समझाना हमारा काम है। देखिए जी, आप एक बार फोन लगाइए उसे, पूछिए कहाँ है, कब तक आएगी।
वो रात अजीब सी थी, हजार सवाल उमड़ते हुए मुझे परेशान कर रहे थे। एक छटपटाहट थी कि मेरे पास क्यों नहीं है एक भी जवाब। मैं और डॉक्टर सुमित इसी आत्मा मंथन में लगे थे। डॉक्टर क्यों बनी थी मैं डॉक्टर, पता है सुमित?
लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते थे स्नेहा, बहुत देर हो गई थी।
जरा सोचिए, इस हालत में बैलगाड़ी पे बिठाकर 8 घंटे कच्चे रास्ते से उसे लाया गया।
वहाँ आसपास अस्पताल नहीं है, शहर तक पहुँचने के लिए न गाड़ी है न रास्ते। शायद इसलिए तांत्रिक और दाई माँ के पास ले जाने के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं था।
एक औरत जो माँ बनने वाली है वो क्या करेगी? बैलगाड़ी में 8 घंटे सफर करने से तो अच्छा तांत्रिक या दाई माँ के पास जाना ही बेहतर है। अब नीलिमा को ही देख लीजिए, आशा होने के नाते घर घर जाती है, लोगों को अस्पताल में पंजीकरण कराने के लिए समझाती है, फिर भी।
हाँ, फिर भी लोग घर में डिलीवरी कराना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाना उन्हें चोंचला लगता है। दाई माँ और तांत्रिक अपने घर वालों जैसे लगते हैं, क्योंकि सालों से उनके परिवार रिश्तेदार उनके पास जाते रहे हैं, जान पहचान है, वो उनकी फैमिली की हिस्ट्री भी जानते हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है।
मुंबई में तो मेरी दुनिया ही अलग थी, कितने केसेस हैंडल किए मैंने, हर केस एक चैलेंज था। हर बार लगता था कि मैं एक बीमारी से लड़कर निकली हूँ, जीतने का एहसास होता था, लेकिन आज हारा हुआ सा लग रहा है। यहाँ संघर्ष बीमारी से नहीं करना होता है, यहाँ तो हर रोज इन लोगों की जिंदगी ही एक संघर्ष है। जी बाबू जी।
स्नेहा बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम घर वापस कब आ रही हो?
हाँ बाबू जी, मैं बस आ ही रही हूँ।
ड्राइवर को भेज दें?
नहीं बाबू जी, डॉक्टर सुमित मेरे साथ हैं, वो मुझे घर तक छोड़ रहे हैं।
अच्छा ठीक है बेटा।
बुआ जी की चिंता कम हो गई थी, वो मुझे समझने लगी थी, लेकिन माँ बाबू जी अचानक से मेरे इस फैसले से परेशान हो गए थे, खास करके माँ। डॉक्टर सुमित मुझे घर तक पहुँचाने आए। आपने जब अपने घर पे बताया होगा कि प्रतापपुर में बसना है, तो घर वालों ने बहुत विरोध किया होगा ना?
हाँ।
अभी भी वापस बुलाते होंगे, इतनी बड़ी क्लिनिक जो है दिल्ली में।
उन्हें लगता है मैं उन्हें नहीं समझता, और मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझते। मेरे पापा अपनी क्लिनिक सर्विस सेंटर की तरह चलाते हैं, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, रविवार को छुट्टी। मॉल्स की तरह उनके क्लिनिक में कितने लोग आए गए ये नापा जाता है।
मुंबई में मैं भी इसी तरह की जिंदगी का एक हिस्सा थी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा कोई और भी जिंदगी होती है ये मालूम ही नहीं था। अब जाकर पता चला है कि दिल की खुशी किस में है। अगर मैं जरा सा भी बदलाव ला पाई तो।
मुझे पता है कि बदलाव कोई अलादीन का चिराग नहीं है, धूमिल सी लौ है जिसे हर आंधी तूफान से गुजरना होता है। क्या तुम तैयार हो इस आंधी तूफान से गुजरने के लिए?
याद है डॉक्टर सुमित, जब मैं पहली बार मुंबई जा रही थी तो आपने मुझसे कहा कि मैं बदल गई हूँ।
वो पुरानी बात है,
मैं फिर से बदलना चाहती हूँ।
घर आ गए।
उस रात मुझे नींद नहीं आई। रात भर उस औरत की तस्वीर मेरे आंखों के सामने घूमती रही। अचानक से आधी रात आंखें खुल गई।
दीदी क्या हुआ? दीदी
कुछ नहीं, शायद बुरा सपना। तुम सो जाओ प्रीता।
ये लीजिए पानी। आप परेशान है ना दीदी?
हकीकत और सपने आंख में चूली खेल रहे हैं प्रीता। पता नहीं जिस डगर मन जा रहा है वो सही है या नहीं।
बाबूजी बचपन में कहा करते थे ना कि जहाँ हमारा मन हो हमें वही होना चाहिए। जो मन की सुनता है वो कभी गलत नहीं होता दीदी।
हाँ प्रीता, शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या वो रात मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था जिसने जिंदगी जीने के नए रास्ते को तय करने में मेरी मदद की?
सुदूर कई गांवों में अस्पताल नहीं होते, लोग दाई या बाबाओं से ही इलाज कराते हैं। क्या आपके इलाके में भी यही समस्या है? हमारे साथ अपने अनुभवों को बांटें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।